ओम शांति। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बहुत प्यार से खड़े हो जाएं। अब आमने सामने दो का ग्रुप बना लीजिए, जोड़ी। हाँ, सभी अपनी एक एक जोड़ी बना लीजिए। एक दो के हाथ में हाथ दे करके आपस में कहिए ओम शांति, गुड आफ्टरनून। अब हाथ जोड़िए, नमस्ते करिए। हाँ, नमस्ते बोलिए, नमस्ते। हाँ जी, अब एक दो को सैल्यूट दीजिए, सलाम। अब बहुत प्यार से और रूहानियत से आपस में एक दो को गले लगाएं। अरे वाह, अब अच्छी ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा। जब शुरुआत में 10 मिनट योग चला बंद करके उठा दीजिए बस। हाँ, बस अभी इस तरफ एकाग्र हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, वो काफी टाइम से खड़ा था ना, तो थक गया था। हाँ, जब 10 मिनट योग चला तो मैंने यहां से देखा कि बहुत सारे भाई ट्रांस में चले गए थे। हाँ, तो उनको नीचे उतारने के लिए ये छोटी सी एक्सरसाइज कराई। अच्छा, बाकी आज वो सभा है जिसके लिए कहेंगे कि यज्ञ का सच्चा सच्चा बल। युवा है ना, सारी सभा में देखते हैं, दूर दूर तक सारी युवाओं की सभा बैठी है। यज्ञ की सच्ची संपत्ति कहो, यज्ञ की सच्ची ताकत कहो, इस महायज्ञ की सबसे अधिक सुंदर शोभा कहो, तो वो आप सभी हैं। अभी आपके लिए ताली बजाओ। देखो, किसी भी संस्था की या राष्ट्र की संपत्ति व बल कितना है तो वो देखने के लिए लोग नजर करते हैं उसमें जुड़े हुए युवाओं की तरफ। और यहाँ न सिर्फ युवा हैं, लेकिन साथ में पवित्र युवा हैं। दुनिया में जो जो संस्थाएं होती हैं, संप्रदाय होते हैं, बहुत सारे हजारों की संख्या में उनके पास भी कुमारों के ग्रुप होते हैं, युवा धन होता है, लेकिन पवित्रता के साथ वाला निर्व्यसनी और संपूर्ण रूप से ईश्वरीय कार्य के अर्थ समर्पित हो, ऐसे युवा बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए कहा कि यज्ञ की सच्ची शोभा आप सभी कुमार हैं। आज का विषय है लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। जब ये विषय मिला तो मुझे अंदर से जो स्मृति आई थी वह यही थी कि जिंदगी में अगर अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, सिर्फ ज्ञान मार्ग में नहीं भाइयों, दुनिया में भी, तो बैलेंस से चलने की कला वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा जो रोड पर फुटपाथ पर चल के जाते हैं, कोई उसको देखने के लिए नहीं जाता है। लेकिन कभी आपने नट को देखा है जो रस्सी पर चलता हो? हाँ, देखा है, दोनों तरफ पिलर्स होते हैं और बीच में रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी के ऊपर चल करके इस पार से उस पार तक जाते हैं। आप में से देखा है कोई ने? हाथ उठाओ। ओहो हो हो, सभी ने देखा है, बहुत अच्छा। तो उसको देख करके लोग तालियां बजाते हैं, मना एक्स्ट्रा अभिनंदन उसको देते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी चलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैलेंस से चलना, उसमें कमाल होती है। आपने जितने भी टू व्हीलर्स रास्ते के ऊपर देखे होंगे, साइकिल है, स्कूटर है, मोपेड है, बाइक है, जो भी है, वो अच्छी गति से तभी चल सकते हैं कि जब चलाने वाले का लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड का अच्छे से अच्छा बैलेंस हो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम सभी जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, अगर किसी भी एक तरफ डल गए, लौकिक लेफ्ट की तरफ, तो भी गति नहीं, और अगर सिर्फ राइट की तरफ ही डल गए अलौकिक, तो भी अच्छी प्रगति नहीं। लेकिन जितना बैलेंस में चलना सीख लेते हैं, उतना जीवन निर्विघ्न रहता है, दुआओं से भरपूर रहते हैं, दोनों तरफ की दुआएं, लौकिक और अलौकिक, दुआओं से भरपूर रहते हैं। और जिनके पास दुआओं का स्टॉक सबसे अच्छा है, ध्यान से सुन लेना, वही आत्मा इस ज्ञान मार्ग का विजयी रत्न है। लाख प्रयत्न हम करें सेवाओं के, बिजनेस के, अच्छे संबंध निभाने के, सब, लेकिन अगर दुआओं के पात्र आत्मा नहीं बनती है, तो कहां ना कहां विघ्नों, परिस्थितियों, समस्याओं को सामना करते हुए मार्ग से आगे जाना पड़ता है। तो आज हम सभी कुछ इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। बाबा ने तो बहुत सारे प्रकार के बैलेंस हमें सुनाए हैं, काफी अव्यक्त मुरलियां इस बैलेंस की विधि के ऊपर चली है। और बाबा का एक स्लोगन तो आप सभी को जरूर याद होगा ही, कि जितना बैलेंस में रहेंगे उतना बाप दादा और ब्राह्मण परिवार की अधूरा वाक्य पूरा करो। हाँ, देखो कितना होशियार ग्रुप बैठा है। ब्लेसिंग के पात्र बनेंगे, ठीक है ना, आशीर्वाद, ब्लेसिंग बाप दादा की भी और सारे ब्राह्मण परिवार की भी, लौकिक परिवार की भी, सभी की आशीर्वाद के आत्मा पात्र बनती जाती हैं। तो सबसे पहला बैलेंस है, जिसको निभाने में बहुत बड़ी कला है। वैसे भी देखो, बैलेंस में चलना, बैलेंस में रहना, जैसे और कलाएं होती है ना, नृत्य कला है, संगीत कला है, चित्र कला है, लेखन कला है, भाषण, कितनी सारे प्रकार की कलाएं दुनिया के अंदर मौजूद हैं। लोग उसको कलाकार कहते हैं, कला का रचयिता कहते हैं। तो उसी प्रकार बैलेंस में चलना ये भी एक जिंदगी की बहुत बड़ी कला है, आर्ट है। और जो इस आर्ट को सीख लेता है, वही इस ज्ञान मार्ग में विजय को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहली बैलेंस में चलने की अगर कला हो, तो वह है संबंधों की, लौकिक और अलौकिक संबंध। जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तो शुरुआत का जो भर्ती का समय होता है, समुद्र देखा है ना सभी ने, कितना जोरों की भर्तियां आती है पूनम के दिनों में, लेकिन उस समय अगर हम भी भर्ती की तरह अधिक अलौकिक में चले जाते हैं, अधिक। तो संघर्ष कहाँ शुरू हो जाता है? हाँ, लौकिक के अंदर। बाबा ने हम सभी को यह सबसे अच्छा बैलेंस सबसे पहले संबंधों का सिखाया है। आप सभी कुमार हैं, स्वतंत्र भी है, शक्ति से संपन्न भी है, लेकिन एक बात को कभी भी भूले नहीं कि जो हमारे जन्मदाता हैं, उनके हमारे प्रति बहुत आशाएं होती हैं, बहुत आशाएं होती हैं, दोनों तरफ के जन्मदाता। समझे आप, दोनों तरफ के जन्मदाता, लौकिक भी और अलौकिक भी। क्योंकि कुमार जब ज्ञान में चलते हैं तो सेंटर में खास तो बहने ही बहुत खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी सेंटरों के अंदर सेवा की वृद्धि का आधार ही कुमार है। जहां पर कुमार नहीं होते हैं उन सेवा केंद्रों की हालत और खास उस सेंटर की टीचर्स बहनों की स्थिति देखने जैसी होती है। लेकिन जहां पर कुमार बाबा के बने हैं और अधिक कुमार सेंटर पर हैं, सकारात्मक प्रवृत्ति में जुटे हुए हैं, तो उनके द्वारा जोर भर कर के सेवाएं होती हैं। ऐसे समय पर दोनों ही जन्मदाता के बीच में बैलेंस रख कर के चलना, ये बहुत बड़ी कला है। माँ बाप जो हमारे घर में है, मेजोरिटी कुमारों का देखा गया है कि परिवार में से अकेले चलते, बहुत कम कुमार इस सभा में भी होंगे कि जिसका पूरा फैमिली बाबा के ज्ञान में होगा। हाथ उठाओ जो अकेले कुमार ज्ञान में चलते हैं। ओह देखो सारी सभा, आगे बैठे ना, पीछे मुड़ के देखो, कितने, फिर से हाथ उठाओ भाई, देखो कितने सारे कुमार हैं अकेले चलते हैं। आपके लिए इसीलिए यह विषय रखा गया है, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। सबसे पहले संबंधों के अंदर इस बैलेंस को चेक करें कि मैं अपने संबंधों की जिम्मेवारियां लौकिक और अलौकिक के बीच में यथार्थ रूप से निभा रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है सेंटर में रहना, पवित्र वायुमंडल में चलना, ब्राह्मणों के संबंधों में रहना, उसी क्योंकि दुनियादारी को छोड़ दिया है ना, वो सिनेमा देखना, पिक्चर, टीवी, वो बाहर का वर्गल कल्चर वो अभी पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा अधिक झुकाव हो जाता है कभी कभी ज्यादा अलौकिक के तरफ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जन्मदाता हमारा कितना इंतजार करती रहती है, उसको भी हमारे से इच्छा होती है कि कभी मेरा बेटा मेरे साथ भी 10 मिनट बैठे, प्यार से बात करे, घर की रखवाली करे, घर के अंदर क्या जरूरत है उसके प्रति पूछे तो सही। आशा रहती है नहीं रहती है भाइयों? रहती है ना। उसको निभा करके ईश्वरीय संबंधों के अंदर स्वयं को जोड़ के रखना, ये है संबंध का, लौकिक और अलौकिक संबंध का बैलेंस। इतने अलौकिक संबंध में न चले जाए कि जो लौकिक का पल्ला ही बिल्कुल खाली रहे, नहीं तो फिर वहां से बहुत सारी कंप्लेंट सेंटर की बहनों की ओर आना चालू हो जाती है कि जब से ये ओम शांति में गया है कोई काम का ही नहीं रहा है। होते तो बहुत काम के हैं, क्योंकि जो पहले घर में करते थे उनसे 10 गुना तो सेंटर में करते हैं ना। लेकिन जब अपनी जिम्मेवारियां यथार्थ रूप से नहीं निभाते हैं तो उस समय उनकी यह फरियाद रहती है और वह बाबा से नजदीक आने के बजाय क्या होता है, क्या अनुभव है, दूर होना शुरू हो जाते हैं। ओम शांति में जाने जैसा नहीं है। वहां जो जाते हैं वो घर की जिम्मेवारियों से बिल्कुल ही विमुख हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात अपने आप की यह चेक करें कि मेरा संबंधों का बैलेंस कहाँ तक है। और इतना लौकिक में भी न झुक जाए भाइयों कि अलौकिक के लिए ज्ञान का, योग का, मुरली का, क्लास का हमारे पास टाइम ही न रहे। क्योंकि बाबा ने हमें यह भी सिखाया है कि बच्चे पुण्य का खाता जमा करने के लिए बैंक सिर्फ संगम पर ही खुली है। 3-4 साल पहले की आप बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ना, बाबा ने उसमें साफ कहा था कि पुण्य का खाता जमा करने की बैंक वो सिर्फ संगम पर ही खुलती है। संगम युग पूरा तो यह बैंक भी समाप्त, फिर नहीं। तो 5000 साल का पुण्य भी जमा करना है और संबंधों का बैलेंस भी रख करके चलना है। तो उसके लिए 3 बातों के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहला अपनी दिनचर्या। सबसे पहला मेरी दिनचर्या इस प्रकार की हो कि जिसमें कुछ हिस्सा में बाबा के घर के लिए और कुछ हिस्सा में अपने लौकिक परिवार के संबंधियों के लिए दे सकूं। सबसे पहली बात समय। दूसरा है शक्तियां, ताकत। पूरे दिन के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट कुछ परिवार में भी होना चाहिए। हम सेंटर में तो बड़े प्यार से सब्जी काटने बैठ जाते हैं, करते हैं ना। हमारे यहाँ कुमार बहुत प्यार से, हम बहने करती है ना, तो आएंगे, ओ दीदी आप काट रहे हो, छोड़ दीजिए मैं काट देता हूँ। क्या यही संबंध मेरा घर में है? मेरी माँ काट रही हो, बहन काट रही हो, वही सब्जी। अभी यहाँ से भट्टी से जाकर के एक बार जरूर कहना, लाओ मम्मी मैं सब्जी काट के देता हूँ। माता जी कहेंगे कि वाह भाई, ये तो पूरे देवता बन करके आ गए भट्टी से। ये बैलेंस है। जितना हम बाबा के यज्ञ के प्रति समर्पित हैं, उतना ही समर्पण और स्नेह मेरा लौकिक घर के प्रति भी हो। तो एक समय, दूसरा शक्ति माना कर्म का, और तीसरा प्यार का। प्यार का भाव, नफरत नहीं। अलौकिक से तो अच्छा प्यार का नाता बन जाता है संबंधों के अंदर, क्योंकि वहां से प्राप्ति है, सुख है, अनेक प्रकार की हमको आंतरिक खुशी है। जब हम अलौकिक संबंधों में चले जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कई कुमार ऐसे कहते, बहन जी अब तो घर जाने की दिल ही नहीं होती है, इतना बाबा के घर के अंदर सुख भासता है। लेकिन याद रखें कि घर में भी आपका कोई इंतजार कर रहा है। परिवार के सदस्य भी कभी आपको अधिक प्यार से याद करते हैं। तो संबंधों के अंदर यह 3 बातों के ऊपर जरूर अटेंशन दे। सबसे पहला समय, न इतना लौकिक के प्रति भी ढल जाए कि जो हमको सेवा के लिए हमेशा मनाही करनी पड़े, मैं नहीं कर सकूंगा, मुझे लौकिक घर में काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये जवाबदारी है, मेरे से नहीं हो सकेगा। उनसे क्या होता है, अधिक लौकिक की ओर ढल गए ना, तो एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार तो बहने या ब्राह्मण परिवार हमें कहेगा, लेकिन 5वीं बार वो अपने आप ही पहले से ही सोच लेंगे कि हमेशा मना ही करता रहता है, ये हमेशा ना ही कहता है, इसको नहीं कहेंगे। तो दोनों का बैलेंस निश्चित कर ले, निश्चित कर ले। अभी मैं थोड़े दिन पहले जलगांव के बाजू में कोई गांव नगर है वहां गई थी, मेरे को नाम भूल गया है, तो वहां पर ना एक कुमार ने इतनी अच्छी बात मेरे को, ये बैलेंस की बात बताती हूँ। वो दोपहर का टाइम था, भट्टी थी भाई बहनों की, दोपहर का समय था, तो उसने अपनी बहन जी को कहा कि बहन जी मैं घर होकर के आता हूँ। बहन ने कहा ठीक है। वो गया ना, उसके बाद वो बहन कहती है कि बहन जी ये इतना अच्छा भाई है, इतना अच्छा भाई है, इसने अपना टाइम फिक्स करके रखा है कि सवेरे का आधा घंटा पौना घंटा मुझे संबंध निभाना ही है, बाबा के घर से निभाना है, दिन का इतना समय मुझे, उसके परिवार से कोई ज्ञान में नहीं चलता है, दिन का इतना समय मुझे लौकिक घर के अंदर मदद करनी ही है, क्या भी हो जाए। लौकिक में भी हमारी बहुत आवश्यकता होती है, चीजें खरीदना, बिल जमा करना, फोन बिल, लाइट बिल, कितने सारे कारोबार घर के होते हैं। तो इस प्रकार लौकिक और अलौकिक का आपस में सबसे पहला बैलेंस है संबंध का, दूसरा है संपत्ति का, क्योंकि जीवन में यह तीन चार चीजों का बैलेंस ही हमारा भाग्य बनाने के निमित्त बनती है। दूसरा है संपत्ति, धन का बैलेंस। अधिक धन कमाने के पीछे लग गए, समझ लो कुमार जीवन का आगे चल करके, कुमार तो रहेंगे लेकिन युवावस्था का अस्त हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, दो साल, पांच साल, दस साल, पंद्रह साल, उसके बाद धीरे 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 करते ये जो चढ़ाई का खून है ना, गरम खून है अभी, बहुत अच्छा, सेवा शक्ति सब अंदर से उमंग है, लेकिन इस उम्र के अंदर अगर अधिक संपत्ति के पीछे भागने लगे, क्योंकि आजकल बहुत सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, जरूरी है भाइयों, मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि महंगाई भी काफी है, मुझे पता है, आज 100 रुपये किलो तो टमाटर हो गए हैं, जमाना कितना महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल उनसे सस्ता हो गया, तो जरूरी है धन कमाना, ये भी आवश्यक है, नहीं आवश्यक है ऐसा नहीं, लेकिन बैलेंस, बैलेंस बाबा जो मुरली में कहते हैं कि बच्चे दाल रोटी जितना कमाते हो तो काफी है, थोड़ा बहुत चलो अपना बैंक बैलेंस भी आवश्यक है, लेकिन अधिक रुपया इकट्ठा करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, योजनाएं बनाते ही रहे, पता नहीं है आगे चलकर के समय कैसा आएगा। मैं एक कुमार की आपको सच्ची जीवन गाथा सुनाती हूँ इसी धन के बारे में। बहुत सालों पहले हमने उसको कहा था कि भाई जी आप इतना भाग रहे हो, सवेरे से देखो रात तक बस यही काम यही काम यही काम, धनवान तो इतना हो गया है, अभी भी है, बहुत पैसे वाला हो गया है, भाग्य कुछ भी नहीं जमा हुआ, बाबा के यज्ञ के अंदर ईश्वरीय सेवा का कोई भी भाग्य नहीं, रेर कभी कोई एक एक पुण्य जमा कर सका होगा, बस उसका प्लानिंग क्या था आप बहुत ध्यान से सुनना, उस कुमार का प्लानिंग यह था कि पहले अच्छी तरह कमा लो, बहुत कमा लो, और फिर निश्चिंत होकर के सेवा ही तो करनी है। अभी हालत क्या हुई है, अभी की हालत, पीछे के जो मणके होते हैं ना, बैकबोन के नीचे की रीढ़ की हड्डियों के अंदर मणके हैं, उसमें से 2 मणके डैमेज हो गए हैं, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है आप न वजन उठा सकते हो, न ज्यादा बैठ सकते हो, न कोई भी हार्ड वर्क कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए। कहां गया उसका प्लानिंग? बाबा हमें क्यों कहता है कि बच्चे कल किसने देखा है? हमारी दादी जानकी तो सभा में वारंवार ये बात पक्की कराती हैं। अगले साल की बात तो छोड़ो, लेकिन कल किसने देखा है? आज ब्रह्म मुहूर्त मेरा जन्म है और रात्रि का विश्राम इस देह का मृत्यु है। बस यही जीवन, आज के दिन का बैलेंस चाहिए, आज के दिन का मेरा पुण्य भी जमा होना चाहिए और पैसा भी जमा होना चाहिए, कमाए भी, और थोड़ा समय बाबा के यज्ञ के प्रति निकाले भी, सेवा में, स्थिति बनाने में, योग करने में, जितना यह संपत्ति का और स्व उन्नति का बैलेंस होगा ना, आप स्वयं महसूस करेंगे, खुद ही खुद से महसूस करेंगे, जो महसूसता है संतुष्टता की, अंदर से आत्मा को फील होगा कि नहीं सचमुच आज मेरा दिन बेहतर गया। तो न अधिक ज्यादा कमाने के ऊपर अपना पल्ला झुका दे कि जो यज्ञ का पुण्य, अपना भविष्य का पुण्य जमा करने से हम वंचित रह जाए। और दूसरा, न इतना स्व उन्नति के तरफ लग जाए कि जो बिचारे घर वालों को फिर कुछ हम दे ही न सके। जिस घर के अंदर हम रहते हैं, जहां हम भोजन करते हैं, जहां का हम लाइट, पंखा, ट्यूबलाइट, खाना सब कुछ यूज करते हैं ना या नहीं करते हैं, सब कुछ करते, सेंटर में हम सेवा कर लेते हैं, फिर आते कहां है? घर में। तो कहां ऐसा इंबैलेंस न पैदा करे कि जो अधिक समय हमारा बाबा के यज्ञ में, इस ईश्वरीय परिवार में, और कमाने के ऊपर नामो निशान कुछ भी नहीं, उनसे भी बहुत बड़ी डिसर्विस होती है। सचमुच मैं कहती हूं कि सर्विस भले हमने बाबा के यज्ञ के अंदर कर दी, लेकिन डिसर्विस कहां होती है? लौकिक की तरफ। दूसरों को वो मना करने लगेंगे कि भाई आपके बेटे को कभी वहां नहीं भेजना, हमारा उधर गया ना, कमाना धमाना बिल्कुल छोड़ दिया है, बेकार हो गया है, अब वो घर में कुछ भी देता ही नहीं है। तो इसलिए संपत्ति का बैलेंस रखे। संपत्ति में भी कितना यज्ञ में देना है, कितना लौकिक में देना है, उसका भी बैलेंस जरूरी है। ऐसा ना हो कि बाबा 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 बाबा, मेरा तो सब कुछ बाबा और मेरा पूरा पगार भी बाबा, फिर घर वाले कहां से रोटी खाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि जितना कमाया उतना लौकिक की तरफ, बाबा के यज्ञ के अंदर नाम मात्र नहीं, हम यज्ञ की पालना ले रहे हैं, यज्ञ का अन्न स्वीकार करते हैं, यज्ञ से रूहानी शक्तियां सकाश ले रहे हैं, यज्ञ के प्रति भी मेरी फर्ज है। देखो, और धर्मों में, संप्रदायों के अंदर भी इस बात पर लोगों का ध्यान खिंचवाया गया है। मैं थोड़े दिन पहले एक मुस्लिम बिरादर भाई से मिल रही थी, वो सेवा केंद्र पर आया था और उसके साथ हमारी ऐसे चिटचेट चल रही थी। वो हमें सारा पूछ रहा था सेंटर का कि आपके सेवा केंद्र कैसे चलते हैं और किस प्रकार आप बहनों का खर्चा निकलता है, ये वो सब। तो हम जैसे बताते उसको, फिर यहाँ भी वो माउंट आबू वगैरह, वो मिडल ईस्ट कंट्री का था तो सारा ही वो घूमा हुआ था और थोड़ा ब्रॉड माइंडेड था, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही, सभी धर्म संप्रदायों का वो अच्छी तरह से अभ्यास करता था। तो हमने जब उसको बताया कि हमारे भाई बहने इस प्रकार अपना हिस्सा निकालते हैं, तो उसने कहा कि बहन जी हमारे, मेरे को तो मालूम नहीं था, उसने कहा कि बहन जी हमारे मुस्लिम संप्रदाय के अंदर भी कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि तुम अपना दसवां हिस्सा खैरात के लिए निकालो, खैरात माना दान के लिए, दसवां हिस्सा तुम अपना, 100 रुपया कमाते हो 90 भले रखो लेकिन 10 के ऊपर तेरा कोई हक ही नहीं है, 1,00,000 कमाते हो 90,000 आप यूज कर सकते हो वो बैंक में, चाहे घर में, चाहे कहां पर भी, 10,000 के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो है खैरात के लिए। दूसरे धर्म वालों के अंदर भी इस बात की समझ है, तो हमारे अंदर भी ये समझ जरूर चाहिए। हम अपनी रीति से निश्चित करें, अपनी रीति से निश्चित करें कि मुझे अपना कितना हिस्सा बाबा के यज्ञ के अंदर और कितना हिस्सा अपने लौकिक परिवार के प्रति यूज करना है, क्योंकि जिम्मेवारी सभी की अपनी अपनी होती है, जिम्मेवारी सबकी अपनी अपनी होती है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, अकेला हूँ, आगे पीछे भी कोई नहीं है, माँ बाप को संभालने वाले भी दूसरे भाई हैं और मेरे पास बहुत सारा धन बचता है, तो उस हिसाब से मैं हर महीने बाबा के यज्ञ के अंदर सफल करूं। बहुत सारा सिर पर कर्ज है, लौकिक में कोई कमाने वाला नहीं है, अकेला ही हूँ, मेरे ऊपर ही पूरा घर चल रहा है, तो उतना थोड़ा सा ही हिस्सा भले यज्ञ में रहे लेकिन अपनी पुण्य की पूंजी जमा होनी ही चाहिए। भविष्य के आधार पर अगर सोच करके बैठते हैं तो इनसे नुकसान ये हो जाता है कि भविष्य को न हम जानते हैं न आप जानते हैं, किस समय वो कुमार की तरह हमारी हालत होगी। कर्म भोग अभी देखो शरीर साथ दे रहा है, दे रहा है ना सबको शरीर, तभी तो देखो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सभी पहुंचे हैं, समय भी साथ दे रहा है, वायुमंडल का भी साथ है, सभी प्रकार का साथ अभी है, लेकिन कुछ नजदीक के भविष्य में ही आप याद रखना इन शब्दों को, शरीर की कर्म भोगनाएं अपना हिसाब लेना चालू कर देंगी। अभी बाबा ने जो हम सभी के शरीर सलामत रखे हैं ना, वो इसीलिए रखे हैं कि हम स्थिति बना ले, हम अच्छी तरह से सेवा कर ले, हम अपना दुआओं का खाता दोनों तरफ से जमा कर ले, हम बहुत अच्छी तरह अपना भाग्य बना ले। इसलिए बाबा ने अभी तक भी हम सभी के शरीरों को सलामत रखा है। आगे चल करके इसी शरीर से 2,500 वर्ष से किए हुए जो विकर्म है वो भोगना किसके द्वारा है भाइयों, किसके द्वारा भोगना है, इसी शरीर के द्वारा भोगना है ना। तो यह पेपर आगे चल करके आएगा, प्रकृति भी अपना हिसाब जरूर लेने के लिए आएगी, क्योंकि प्रकृति को भी हमने काफी नुकसान पहुंचाया है संकल्पों से, कर्मों से। हमारी दादी जानकी तो इसीलिए कहती है कि जब आप पैदल करते हो ना तो भी धाम 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 करके नहीं चलो, घसेट घसेट के चलते है ना, तो दादी कहती है कि ये भी आप धरती को दुख दे रहे हो, ये भी आप धरती को दुख दे रहे हो। तो ऐसे तो कितना दिया होगा सोचो प्रकृति को, हमारे द्वारा कितने प्रकार के नेगेटिव वाइब्रेशन मिले होंगे। तो दादी कहती है बहुत शांति से, रूहानियत से, प्यार से चलो, वाइब्रेशन देते हुए चलो, तो वो धरती को भी सुख मिलता है। तो प्रकृति के 5 तत्व भी तो आकर के हमारे पास हिसाब मांगेंगे ना, बदला जरूर लेंगे। अभी वो भी सलामत खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अवस्था बना ले, हम अपना भाग्य बना ले। इसलिए तो पहला बैलेंस है, याद रहेगा भाइयों, पहला बैलेंस हाँ, दूसरा तीसरा बैलेंस है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वह है सेवा लौकिक और अलौकिक का। सेवा लौकिक और अलौकिक का बाबा ने यह भी हमें बहुत प्यार भरा इशारा दिया है कि सेवा केंद्र में जो सेवा करते हो वो तो आपका भाग्य बन ही रहा है, लेकिन घर को भी अगर बाबा का घर समझ करके काम करते हैं तो वो भी हमारा हाँ सेवा के खाते में जमा होता है। तो इसलिए सेवा का भी जरूर बैलेंस रखें। सेवा केंद्र में सेवा की, बहुत अच्छा किया, घर गए तो घर को घर न समझे, लेकिन क्या समझना है, कई कुमार अपने आप सब कुछ करते होंगे, आप में से ऐसे कोई कुमार है जो अपने आप भोजन बनाते हैं, अकेले भी रहते हैं, इतने सारे हैं, हैं? फिर से एक बार लंबा हाथ उठाओ, हम दर्शन तो करें। ये सब अपने आप भोजन बनाते हैं, वाह भाई। अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ना, वो इन्हों के लिए ताली तो बजाओ। ये तो कमाल की बात है, तब तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है। घर में भी जो सेवा करते हो ना, काम कभी न समझे, भोजन बनाना पड़ता है, फिर भोजन के बाद और भी तो कितना लंबा लंगर होता है, होता है ना, जो बनाते उनको पता है, जो नहीं बनाते उसको नहीं पता है, लेकिन वो कुकर ढूंढो, विसल सोड़ने के लिए जाओ, फिर खरीद करने के लिए जाओ, फिर दाल इतनी 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 अच्छी तरह साफ करो, सब्जी काटो, आटा पिसाने के लिए जाओ, फिर वो भी लेकर के आओ, कितना सारा उसके पीछे तो चैनल है लंबी। लेकिन हमेशा एक बात याद रखे, जो अपने आप भोजन बनाते हैं वो इस महावाक्य को लिख दे, ये बाबा का महावाक्य है, भोजन के स्थान को तपस्या का स्थान समझे। भोजन नहीं बना रहा हूँ, तपस्या के स्थान पर हूँ, साधना का। जैसे योग रूम के अंदर कितना आनंदित होकर के बैठते हैं, वैसे ही भोजन के स्थान को भी अगर तपस्या का स्थान बना दे तो वह स्थान हमारे लिए काम का नहीं रहेगा, लेकिन सेवा का क्षेत्र बन जाएगा। बहुत अच्छी तरह से सभी कुमार ध्यान से सुनना, जब भी भोजन बनाने के लिए जाते हैं, सीधा भोजन बनाना कभी भी शुरू ना करें, थकान लगेगी, उसके साथ साथ बोरिंग भी ज्यादा हो जाएंगे और नहीं बनाने का भी दिल होगा, लेकिन एक मिनट बाप दादा का आह्वान अवश्य करें। भले एक ही मिनट की देरी होगी, लेकिन महसूसता के साथ कि वतन छोड़कर के बाप दादा भंडारे में है, बाबा की बहुत अच्छी पवित्र सफेद रंग है पवित्रता का, हरा रंग है शांति का, पीला रंग है शक्ति का, तो सारे के सारे भंडारे के अंदर जहाँ आप भोजन पकाते न, वहाँ पावरफुल किरणें पड़ रही हैं, और फिर भोजन बनाना शुरू करें, ताकत भी आएगी, बाबा भी बड़े प्यार से वो भोजन स्वीकार भी करेगा, भोजन करने का अंदर से एक उमंग पैदा होगा कि बाबा मेरे साथ हैं, और वो भोजन करने से पवित्रता की मात्रा में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि जब हम बाबा की याद में रह करके भोजन पकाते हैं तो उसके वाइब्रेशन उस भोजन के अंदर जाए बिना रहते नहीं है, और वो भोजन करने से आत्मा का पवित्रता का ग्रोथ बहुत अच्छा बढ़ता है। क्योंकि आप जिस मैदान में रहते हैं वहां इस शक्ति की परम आवश्यकता है। इतनी विकृति चारों तरफ फैली हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो भोजन से, पानी से जो प्राप्त किया हुआ प्यूरिटी का बल है ना, वो इनप्यूरिटी के सामने लड़ने में बहुत मदद करता है। कभी भी ऐसे वैसे गीत सुनते हुए, टीवी चालू करके कभी भोजन न बनाए, भगवान स्वीकार नहीं करेगा। आजकल का फैशन हो गया है ना कि एक तरफ टीवी चलता होगा और दूसरे तरफ ऐसे कटिंग भी चलती होगी, सब्जी भी काटे, आटा भी बनाए, ये भी करे। कभी नहीं। जो कुमार घर में भोजन नहीं बनाते हैं, वो भी इस बात पर जरूर प्यार भरा अटेंशन अवश्य खिंचवाए, क्योंकि आप सभी को भी उस पवित्र भोजन की परम आवश्यकता है। तो भोजन जहां तक हो सके, जैसे योग रूम की अवस्था होती है उसी अवस्था में स्थित होकर के अगर भोजन बनाते हैं, विकृतियों के सामने लड़ने का जबरदस्त बल मिलेगा, वंडरफुल बल मिलेगा। संकल्प तक कभी भी संसारी जीवन के नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, नहीं तो बहुत खतरनाक माया है। कैसी माया है वो तो आपको आगे चल करके उस टॉपिक के क्लास में सुनने को मिलेगी। लेकिन ये वरदानी जीवन, मैं तो कुमार जीवन को कहती हूँ वरदानी जीवन। क्यों वरदानी जीवन है उसका कारण मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो आप कभी किसी बुजुर्ग अधर कुमार को पूछ लेना, वो आपको वर्णन करेंगे। और तब उनके वर्णन सुनकर के लगेगा कि सचमुच भगवान की सबसे बड़ी मेहरबानी कि जो कुमार जीवन में ही बाबा मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सभी वैसे तो बैलेंस में चल ही रहे हैं, लेकिन अगर कहां पर भी इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करके अपनी अवस्था को दोनों तरफ देखते हुए, जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अगर इन संबंधों के, संपत्ति के, सेवा के और भी बहुत सारे बैलेंस है उसमें चलते रहेंगे, दुआओं के पात्र तो बनेंगे ही, लेकिन निर्विघ्न कुमार जीवन का अनुभव सहज कर सकेंगे। अभी 3 मिनट अच्छी एकाग्रता से, जल्दी तो नहीं है ना, टाइम पर आपको छुट्टी मिल रही है, 3 मिनट बहुत अच्छी एकाग्रता से सभी अपने अपने भंडारे में जाएंगे, जहां भोजन बन रहा है ना, चाहे बनाते हो चाहे नहीं बनाते हो, सब अपने अपने लौकिक घर को इमर्ज करना। जहां आप भोजन बनाते हो उस स्थान को इमर्ज करना, वहां पर मेरा साकार तपस्वी स्वरूप, मेरे ऊपर बाप दादा और बाबा की पवित्रता की किरणें, पवित्रता का सूर्य मेरे भंडारे में है और उसकी बहुत अच्छी पवित्र किरणें सारे घर में, किचन में, सब जगह फैल रही हैं। चलो बहुत अच्छी तरह से अच्छे अलर्ट होकर के बैठे हैं, ढीले ढीले नहीं बैठो भाई, आंखें खोल के बड़े प्यार से अच्छी तरह बैठे, एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे से। भगवान आज अपने लौकिक घर में है, उनसे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। चले सभी,
thank you। रग रग में